بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ پریہ شروتا متروں، کارکرم کا شبھارمبھ پوتر قرآن کے سورہ لقمان کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری مصطفیٰ اسماعیل۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ لقمان نے کہا، ہے میرے بیٹے، یدی وہ کرم رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ کسی چٹان کے بھیتر ہو یا آکاشوں یا دھرتی میں، ایشور اسے پرلے میں سامنے لے آئے گا۔ نسندے ایشور سوکشم درشی اور جانکار ہے۔ ہے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور بھلائی کا آدیش دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر دھیرے کرو، نشچے ہی یہ بڑے ساہس کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے گھمنڈ سے اپنا منہ ٹیڑھا نہ کرو، اور نہ دھرتی پر اکڑ کر چلو، निसंदेह ईश्वर किसी अकड़ने वाले और इतराने वाले को पसंद नहीं करता।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शनिवार है, आजर की 13, रबीउल सानी की 28 और दिसंबर की 4 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के हमारे पते नोट कर लें। भारत में हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.iribi.ir, जबकि वेबसाइट का पता है pastoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप देश विदेश के समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा। श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा कि मानवीय मामलों के दृष्टिगत ईरान में विदेशी नागरिकों का वैक्सीनेशन भी पूरी गंभीरता से जारी रहेगा। अमेरिका ने कहा कि वो परमाणु समझौते से निकलकर अलग थलग पड़ गया है। अफगानिस्तान गेहूं भेजने के मामले में भारत और पाकिस्तान के मध्य सहमति बन गई है। अफ्रीकी देश माली के केंद्र में आतंकवादी हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि मानवीय मामलों के दृष्टिगत ईरान में विदेशी नागरिकों का वैक्सीनेशन भी आरंभ हो गया है। राष्ट्रपति ने कोरोना से मुकाबले के राष्ट्रीय आयोग की बैठक में आज कहा कि मानवीय मामलों के दृष्टिगत इस्लामी गणतंत्र ईरान ने आरंभ से ही समस्त विदेशी नागरिकों का टीकाकरण आरंभ कर रखा है और पूरी गंभीरता से उसे जारी रखेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ यूरोपीय देशों में अब ये कार्य आरंभ हो रहा है। उन्होंने बल देकर कहा कि कोरोना की नई लहर से सुरक्षित रहने का एकमात्र मार्ग गाइडलाइनों का पूरी गंभीरता से ध्यान रखना है। ईरान के राष्ट्रपति ने बल देकर कहा कि देश में कोरोना के वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए और देश के अंदर काफी बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है और बाहर से भी वैक्सीन का आयात हो रहा है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इन बातों के दृष्टिगत देश में कोरोना के दूसरे डोज में भी कमी नहीं होनी चाहिए।
अमरीकी विदेश मंत्री ने ये बात स्वीकार की है कि परमाणु समझौते से निकलकर अमरीका अलग थलग हो गया है। एंथनी ब्लिंकन ने रॉयटर्स को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि परमाणु समझौते से निकलकर ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इसी काम से आज अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। इसी बीच वियना में ईरान तथा गुटचार धन एक की बैठक के वर्तमान चरण की समाप्ति पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेल साकी ने कहा है कि वॉशिंगटन हमेशा ही कूटनीतिक समाधान का पक्षधर रहा है। उन्होंने ये दावा किया कि जो बाइडन परमाणु समझौते में वॉशिंगटन को वापस लाने के प्रयास में हैं। याद रहे कि ईरान तथा गुटचारधन एक के बीच वार्ता सोमवार को वियना में आरंभ हुई थी, जो शुक्रवार को समाप्त हो गई।
इराक के राष्ट्रपति ने आतंकवादी गुट दाइश के बचे खुचे तत्वों से मुकाबले पर बल दिया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस देश के राष्ट्रपति बरहम साले ने कल कुर्दिस्तान के दो गांवों में दाइश के तत्वों द्वारा किए जाने वाले आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया में ट्वीट किया और लिखा कि मखमूर में पीशमर्गा के ठिकानों पर दाइश का हमला खतरनाक है और उसका तुरंत मुकाबला इस समय हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार इराकी राष्ट्रपति ने आतंकवादी गुटों के खत्म करने के लिए इराकी सेना और पीशमर्गा के बलों के मध्य सहयोग को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बरहम साले के बयान से पहले प्रत्यक्षदर्शियों और इराकी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा था कि दाइश के आतंकवादियों ने मखमूर क्षेत्र के दो गांवों पर हमला किया था, जिसमें कई व्यक्ति हताहत व घायल हो गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों हमले में कुछ आम नागरिक और पीशमर्गा के कई सैनिक मारे गए थे।
यमनी सेना ने जासूसी करते हुए अमरीकी ड्रोन को मारे प्रांत में मार गिराया है। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार यमनी सेना के प्रवक्ता यहिया सरी ने बताया है कि अमरीका का स्कैन ईगल ड्रोन मारे प्रांत में जासूसी कर रहा था, जिसे यमनी सेना ने मार गिराया। उन्होंने ट्विटर पर अपने पेज हैंडल पर लिखा है कि यमनी सेना की डिफेंसी इकाई ने उचित हथियार से इस ड्रोन को मार गिराया है और यह सातवीं बार है जब इस प्रकार के ड्रोन को यमनी सेना ने मार गिराया है।
यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन का कहना है कि यमन वासियों के खून से न केवल सऊदी अरब और यूएई के हाथ सने हुए हैं, बल्कि इसमें फ्रांस भी शामिल है। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता मोहम्मद अली अल हुसैन ने फ्रांस के राष्ट्रपति की सऊदी अरब यात्रा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शुक्रवार को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि सऊदी गठबंधन को हथियार बेचने तथा अन्य यूरोपीय देशों को इस काम के लिए प्रेरित करने के कारण हम फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से फ्रांस भी यमनियों के नरसंहार में शामिल है। यमन के उच्च परिषद के प्रमुख ने कहा कि सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के गठबंधन उनके देश की घेराबंदी कर रखी है, जिसके कारण नागरिकों की समस्याएं दुगनी हो गई हैं। जो अभी इस गठबंधन का समर्थन करता है वो उनके अपराधों में शामिल है।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन फ्रांस की खड़े के देशों की दो दिवसीय यात्रा पर दुबई पहुंचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने शुक्रवार को दुबई में यूएई के युवराज मोहम्मद बिन जायद के साथ भेंटवार्ता की। अपनी इस यात्रा के दौरान मैक्रॉन ने यूएई के साथ 14 अरब यूरो के हथियारों का समझौता कर डाला। अरबों यूरो के इस समझौते के अंतर्गत फ्रांस यूएई को राफेल नामक 80 युद्धक विमान बेचेगा। अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इस देश के युवराज के साथ इसी प्रकार का समझौता करना चाहते हैं। इन दोनों देशों को हथियार बेचने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति कतर का रुख करेंगे, वहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा।
ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का त्याग पत्र फारस की खाड़ी के अरब देशों के साथ संबंधों को सामान्य करने में मददगार होगा। नजीब मिकाती ने शुक्रवार को जार्ज कारदाही के त्यागपत्र के बारे में कहा कि लेबनान के साथ फारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों के साथ मतभेद उत्पन्न होने के बाद उनका त्यागपत्र जरूरी था। उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि अरब देशों के साथ तनाव पैदा न होने पाए। उनका कहना था कि हम परस्पर सम्मान के आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंधों के पक्षधर हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि भारत पाकिस्तान के रास्ते 50,000 टन गेहूं और औषधि पदार्थों को अफगानिस्तान भेजेगा। समाचार एजेंसी आवा ने रिपोर्ट दी है कि भारत ने 2 महीने पहले से 50,000 टन गेहूं, दवा और दूसरी जरूरी चीजों को अफगानिस्तान भेजने का प्रस्ताव दिया है, परंतु उसे पाकिस्तान की सहमति की जरूरत थी।
अफ्रीकी देश माली के केंद्र में आतंकवादी हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए। समाचार एजेंसी रोयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार माली के स्थानीय अधिकारियों ने आज शनिवार को ऐलान किया है कि एक आतंकवादी गुट ने बांदियार باندیا گار شہر میں ایک بس پر حملہ کیا جس میں 31 ویکتی ہتاہت اور کئی انیہ گھائل ہو گئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ راجنیتک چرچا۔ श्रोताओ, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे कश्मीर के हालात पर आने वाले बयानों के बारे में।
जम्मू कश्मीर में 1,00,000 के करीब डेलीगेट्स।
लेबनान के सूचना मंत्री ने लंबे विवाद के बाद त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन सऊदी अरब की ओर से अब भी हस्तक्षेपपूर्ण बयान جاری ہیں۔
موضوع في تصريحات شخص معين، الاشكاليه اكبر من ذلك۔
یہ وشے بھی راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔ سعودی عرب کی اور سے تھوپے گئے یدھ کا دنش جھیل رہے یمن کے کٹھن آرتھک حالات میں لوگ کٹھن پرستھتیوں سے جوجھ رہے ہیں۔
ظروف والمعاناة التي يعيشها شعبنا،
یہ وشے بھی راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کشمیر کو لے کر دیے گئے بیانوں سے۔ بھارت میں جہاں گرہ منتری نے کشمیر کے حالات کو بہتر ہوتا بتایا ہے، وہیں کشمیری سانسدوں کا کہنا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ بیورے کے ساتھ ہمارے سنواد داتا سپتے محمد حسن۔
بھارت کے گرہ منتری امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں استھتی میں کافی سدھار آیا ہے اور 370 اور 35 کے سماپت ہونے کے بعد یہاں پر ٹوریزم اور انیہ جتنے بھی وبھاگ ہیں ان میں کافی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جموں کشمیر میں شانتی ہے اور یہاں پر لوگوں نے اس کا سواگت کیا ہے۔ لوک سبھا میں ایک پرشن کا اتر دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ واپس کیا جائے گا اور جو بھی وعدے انہوں نے کیے ہیں انہیں پورا کیا جائے گا۔ اس بیچ نیشنل کانفرنس کے ودھائکوں نے لوک سبھا میں ہی امت شاہ کے اس وکتویہ کا کھنڈن کیا۔ انہوں نے کہا کہ زمینی استر پر جو بات پائی جا رہی ہے وہ اس کے وکتویہ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 ورشوں کے دوران جو بھی باتیں کی گئی وہ زمینی استر پر جھوٹ ثابت ہوئی ہے۔ حسنین مسعودی نے کہا کہ جو گھٹنائیں جموں کشمیر میں گھٹی ہیں ان کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئے دیوس لوگوں کو ہتات کیا جا رہا ہے اور جو گھٹنا حیدرپورہ میں گھٹی ہے اس کے جانچ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں شانتی استھاپت کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، پرنتو زمینی استر پر ایسا کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں استھتی تناؤپورن ہے اور اگر جموں کشمیر میں استھتی کو سدھار لانا ہے تو نئی دہلی کو اپنے فیصلے بدلنے ہوں گے۔
جموں کشمیر میں 1,00,000 کے قریب ڈیلی ویجرز، کیجول ورکرز، کنٹریکٹ ورکرز 10 سال سے ریگولرائزیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ ریگولرلی ان کا جو ویجز ہیں وہ نہیں مل رہے۔ ان کے علاوہ سی آئی سی آپریٹرز کوئی 10 سال سے اپنی ریگولرائزیشن کا انتظار کر رہے ہیں اور انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آشا ورکرز، آپ کو معلوم ہے کہ آشا ورکرز نے کیسا کی ایک رول کیا کووڈ کے خلاف بیٹل میں۔ ان کے جو ویتن ہیں، ان کا جو ویجز ہیں وہ انڈر پیڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جناب، جموں کشمیر کی حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک نوٹس دی ہوئی ہے 193 نیم کے تحت شارٹ ڈسکشن کے لیے، وہ ڈسکشن کی اجازت دی جائے، اور ایک کالنگ اٹینشن موشن دی ہوئی ہے حیدر پورہ، رام باغ، لاوائی پورہ کے جو شوٹ آؤٹس ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے ہم نے نوٹس دی ہوئی ہے، کالنگ اٹینشن نوٹس، سر اس پر غور کیا جائے۔
اس بیچ ایک بار پھر جموں کشمیر میں راجنیتی کافی سرگرم ہو گئی ہے۔ غلام نبی آزاد نے ایک جن سبھا کو سمبوجت کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ 370 کے سماپت کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کو الگ تھلگ کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور میں نئی دہلی سے بنتی کرتا ہوں کہ فوری طور پر جموں کشمیر کو راجیہ کا درجہ واپس دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس سے لوگوں کا وشواس جتایا جا سکتا ہے۔ اس بیچ دھارمک سنگٹھنوں کے سب سے بڑے گٹھ بندھن متحدہ مجلس علماء نے ایک بار پھر جموں کشمیر پرشاسن سے کہا ہے کہ جن مساجد میں نماز کی انومتی نہیں دی جا رہی ہے انہیں فوری طور پر نمازیوں کے لیے کھول دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اتہاسک جامع مسجد میں اب 2 ورشوں سے نماز نہیں ہو رہی ہے جو سیدھے طور پر دھارمک معاملات میں مداخلت ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہ اس کا نہ صرف ورودھ کریں گے بلکہ اس کے ورودھ میں ایک ابھیان بھی چلا سکتے ہیں۔ سبتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
لبنان کے سوچنا منتری نے لمبے وواد کے بعد اپنا تیاگ پتر سونپ دیا ہے، لیکن سعودی عرب کے اس طرح کے بیان آ رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ ابھی سعودی عرب کا ہستکشیپ رکنے والا نہیں ہے۔ بیروت سے حسن عظیم زادے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اختر عباس۔
لبنان کے سوچنا ایوم پرسارن منتری جارج قرداہی نے راشٹرپتی اور پردھان منتری کو اپنا تیاگ پتر دے دیا۔ اس تیاگ پتر کے بعد فرانس کے راشٹرپتی نے لبنان کے خلاف پیدا کیے گئے سنکٹ کے سمادھان کے بارے میں سعودی ادھیکاریوں سے وارتا کیے جانے کے بارے میں خبر دی ہے۔
تأثیرات العامل الخارجی۔
راجنیتک ٹیکہ کار عبداللہ ہادی محفوظ کا کہنا ہے کہ اس تیاگ پتر کی مکھیہ وجہ سعودی عرب کے ساتھ وارتا کے لیے فرانسیسی راشٹرپتی اور پردھان منتری میقاتی کے بیچ ہوا سمجھوتا تھی، لیکن لبنان میں سعودی عرب کی سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مکھیہ وجہ یمن پر سعودی عرب کے حملے ہیں کہ جن کے بارے میں سبھی کو پتا ہے کہ وہ فرانس سہیت پشچمی ہتھیاروں سے کیے جا رہے ہیں، اور اب میکرون سے ملاقات کی مکھیہ وجہ ہتھیاروں کی بکری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ودت روپ سے کچھ اور ہی معاملہ ہو، لیکن 4 سال پہلے پورو پردھان منتری سعد حریری کے زبردستی کے تیاگ پتر کا انبھو درشاتا ہے کہ سعودی عرب کو لبنان کے ہیتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لبنان اور شیتر کے سوشل میڈیا پر لبنانی سوچنا منتری کے اس قدم کی جم کر سراہنا کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر سوتنتر آدمی اور مہان انسان جیسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ یمن کے انصار اللہ آندولن کے پروکتا محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا اور جارج قرداہی کو مہان انسان قرار دیا۔
سید جارج قرداہی۔
ایک ٹیکہ کار کا کہنا ہے کہ جناب جارج قرداہی نے اپنے من سے وہ بات کہی جو پورا علاقہ کہنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب یمن پر 7 سال سے حملے کر رہا ہے اور 17,000 لوگوں کے مارے جانے کے باوجود بھی سعودی عرب کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور آخر کار وہ بے عزت ہو کر اس دیش سے نکلے گا۔
موضوع فی تصریحات شخص معین الاشکالیہ اکبر من ذلك۔
سعودی عرب کے ودیش منتری کے نرنتر اس بیان سے کہ لبنان کے ساتھ ان کی سمسیا جارج قرداہی کے بیان سے آگے کا معاملہ ہے، پتا چلتا ہے کہ لبنان میں سعودی عرب کی سازشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لبنانی ٹیکہ کاروں کا کہنا ہے کہ جارج قرداہی کے تیاگ پتر دینے کے باوجود لبنان کے خلاف سعودی عرب کی سازشیں ختم نہیں ہوں گی، اور اس کا لکش لبنان کے 2022 کے سنسدیے چناؤں کو نشانہ بنانا ہے۔ حسن عظیم زادے، IRIB نیوز، بیروت۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
سعودی عرب کی اور سے تھوپی گئی جنگ کے نتیجے میں یمن کی ارتھ ویوستھا کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ کٹھن آرتھک حالات میں الگ الگ سنگٹھن سکریہ ہو گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ سنا سے عبداللہ علی یوسفی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں قائم رضوی۔
احتفلت هيئت الزکاة بزفاف 7000۔
یمن کی زکات فاؤنڈیشن کے پریاس سے صنعاء میں 7200 لوگوں کے سنیکت وواہ کا کارکرم آیوجت کیا گیا۔ یہ اس زکات فاؤنڈیشن کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو سماج کے ونچتوں، بیماروں، گھائلوں اور ان کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے۔ ہم نے آوشکتا رکھنے والوں میں سے 7200 جوڑوں کا چین کیا، جن میں سوتنتر کیے گئے بندی بھی شامل ہیں۔ یہ وہ بندی ہیں جنہوں نے دشمن کے بندی گرہوں میں یاتنائیں جھیلی۔ ان کے اترکت شہیدوں کے بچے اور افریقہ کے وہ لوگ بھی ہیں جو اس سمے ہمارے ساتھ سنگھرشرت ہیں۔
العرس الجماعی الاکبر فی الیمن،
یمن ہی نہیں بلکہ پورے عرب جگت کی سب سے بڑے ساموہک وواہ آیوجن کا یہ سندیش ہے کہ یمنی اب بھی ایسے جیون کے اچھک ہیں جو بھوکمری، یدھ اور مار کاٹ سے دور ہو۔ اس سماروہ کو انصار اللہ کے مہا سچیو نے سمبودھت کیا۔ یمن واسیوں کو بہت سی سمسیاؤں کا سامنا ہے، نردھنتا بڑھ رہی ہے اور ہمارے دشمن نے یمن کی ارتھ ویوستھا کو لکش بنا رکھا ہے۔ ایسی استھتی میں زکات دینا بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے دیش کی جنتا جن سمسیاؤں کا سامنا کر رہی ہے ہم ان کا سمادھان کریں۔
شعورنا اليوم یعنی اعظم شعور یعنی فی سعادہ و فی غیر۔
ساموہک وواہ کے اس آیوجن میں ہم سب ہی خوشی کا آبھاس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ابھوتپورو ہے۔ حالانکہ یمنیوں کا پریویشٹن کیا گیا ہے کنتو ایشور کی کرپا سے ہم شترو کے مقابلے میں وجئی ہو کر رہیں گے۔
ومنذ تأسیسها فی مایو 2018،
سن 2018 میں گٹھت ہونے والا زکات فاؤنڈیشن اپنے استھاپنا دیوس سے ہی لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے اُدیش سے دیش میں بنی چیزوں اور ان کے بنانے والوں کا سمرتھن کرنے جیسی بہت سی یوجناؤں پر کام کر رہا ہے۔
انسانیت لمواجهة ظروف الحرب والحصار،
صنعاء سے IRIB کے لیے عبداللہ الیوسفی کی رپورٹ۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا کارکرم سماپت ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، اب پرستت ہے ساپتاہک کارکرم ایران بھرمڑ، جس کے بعد آپ سنیں گے سبھا کا انتم کارکرم نیا سویرا۔
ایران بھرمڑ۔
دوستو، کارکرم ایران بھرمڑ کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ کارکرم میں ہم زنجان کی کچھ ایتیہاسک عمارتوں کا الیکھ کریں گے۔
ایران کے زنجان پرانت میں مسجدوں، عمارتوں، اسنان گرہوں، پراچین جل بھنڈاروں اور اسی پرکار کے بہت سے انیہ ایتیہاسک اوشیش اور کئی درشنیہ استھل پائے جاتے ہیں۔ زنجان کی ان پراچین عمارتوں میں سے ایک عمارت کا نام رخت شوئی خانے ارتھات کپڑے دھونے کا وشیش استھان ہے۔ رخت شوئی خانے نامک عمارت زنجان نگر کے پراچین شیتر میں استھت ہے جو وشیش مہتو کی سوامی ہے۔ رخت شوئی خانے کی عمارت زنجان کی پراچین دھروہروں میں سے ایک ہے، جسے اس شیتر کے لوگوں کی سانسکرتک کلا اور پرمپرا کا پرتیک سمجھا جاتا ہے۔ اس عمارت کو دیکھ کر پریٹکوں کے من میں اچھی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔
رخت شوئی خانے کی عمارت واستوکلا کی درشٹی سے بہت مہتوپورن اور اپیوگتا کی درشٹی سے سوئم میں ادویتیہ ہے۔ پورے وشواس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پورے وشو میں کہیں بھی اس وشیش اپیوگتا کی سوامی کوئی عمارت نہیں پائی جاتی۔ اتہ زنجان میں پائی جانے والے رخت شوئی خانے نامک عمارت کو وشو کی ادویتیہ عمارت کہا جا سکتا ہے۔
رخت شوئی خانے نامک عمارت کو زنجان کی سارو جنک لابھ والی بہت ہی مہتوپورن عمارت مانا جاتا ہے۔ कपड़ों को एक स्थान पर सरलता से धोने के उद्देश्य से इसकी आधारशिला सन 1345 हिजरी शमसी में डाली गई थी। इस कार्य को जंजान के तत्कालीन महापौर दिवंगत अली अकबर तौफीकी ने आरंभ करवाया था। जंजान के रक्त शुई खाने के निर्माण में तत्कालीन दो प्रमुख एवं विख्यात वास्तुकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रक्त शुई खाने में एक प्रांगण, जल भंडार और कपड़े धोने का स्थान है। इमारत का आंगन 23 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है, जिसमें पेड़ लगाए गए हैं। इमारत के जिस कार्य ने इसे अद्वितीय बना दिया है वो रक्त शुई खाने की वास्तुकला शैली है। इसके निर्माण में इस्लामी और ईरानी वास्तुकला को दृष्टिगत रखा गया है। रक्त शुई खाने का जल भंडार इमारत के उत्तरी क्षेत्र के छोर पर स्थित है, जो कपड़े धोने के स्थल से सटा हुआ है।
इसका क्षेत्रफल लंबाई में 17 मीटर और चौड़ाई में 11.5 मीटर है। जल भंडार की ऊंचाई 8 मीटर है। इसके भीतर की गोलाई 4 मीटर है, जिस पर इमारत में प्रयोग होने वाले विशेष मसाले का लेप लगाया गया है। ऐसी स्थिति में जल भंडार में पानी की क्षमता लगभग 740 घन मीटर हो जाती है। रक्त शुई खाने के जल भंडार का एक भाग सीढ़ी के आकार जैसा है, जिससे सरलता से वहां पर हो रहे कार्य को देखा जा सकता है।
दोस्तों, रक्त शुई खाने की इमारत में धोने के स्थान को चार भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग विगत में मीर बहाउद्दीन नामक सोते से भरा जाता था। दूसरे भाग में तीन हौज हैं, जो एक के पीछे एक करके बने हुए हैं। इनमें से हर एक के पानी बहता हुआ बाद वाले में आता है। इन तीनों जल कुंडों की उपयोगिता अलग अलग रही है। रक्त शुई खाने की छत पर गुम्बद बने हुए हैं और इस पर प्रकाश के लिए बहुत सुंदर रोशनदान बनाए गए हैं। रक्त शुई खाने की इमारत का पंजीकरण ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में किया जा चुका है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग मानव शास्त्र के संग्रहालय के रूप में किया जा रहा है, जहां पर पारंपरिक पोशाक, जेवरों और पुरानी चीजों को रखा गया है।
दोस्तों, बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों की संख्या के दृष्टिगत जंजान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ पर स्थित ऐतिहासिक इमारतों में से एक गुम्बदे सुल्तानिये भी है। जंजान शहर से 52 किलोमीटर पूर्व में विगत में बहुत बड़ा क्षेत्र था, जो चमने सुल्तानिये के नाम से प्रसिद्ध है। ये मैदान पशुपालन करने वाले कबीलों सहित विभिन्न कबीलों के आकर्षण का केंद्र रहा है।
ये वे कबीले हैं जो 6वीं और 7वीं हिजरी शताब्दी में उत्तरी चीन एवं मध्य एशियाई देशों से ईरान आ गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सुल्तानिये का निर्माण प्रथम अरगून खान मुगल ने करवाया था। सुल्तान मोहम्मद खुदा बंदे अल जायतू के काल में ये अपने वैभव के चरम पर था। सुल्तानिये के पश्चिम दक्षिण भाग में एक महान इस्लामी इमारत किसी रत्न की तरह चमक रही है, जो गुम्बदे सुल्तानिये के नाम से प्रसिद्ध है।
गुम्बदे सुल्तानिये अल जायतू का मकबरा है कि जिसका निर्माण सन 1302 से 1312 के बीच सुल्तानिये शहर में किया गया था, जो ईलखानियों के काल में राजधानी था। इसे इस्लामी व ईरानी वास्तुकला का नमूना माना जाता है। गुम्बदे सुल्तानिये उस दौर के वैभव की याद दिलाता है कि जो 700 साल पहले शहर में पाया जाता था। इस मकबरे की सजावट और इसके निर्माण की शैली वास्तव में उस काल की वास्तुकला का महत्वपूर्ण बिंदु था। इसलिए वास्तुकला में ये एक नई शैली थी कि जो सलजुकी वास्तुकला से भिन्न थी।
विशाल सुल्तानिये गुम्बद की ऊंचाई लगभग 66 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। اس کو اشٹکونی عمارت کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس کے واستوکار سید علی شاہ تھے۔ سلطانیہ گنبد میں تین مکھ پرویش دوار، مقبرہ اور تہخانہ ہے۔ اس عمارت میں آٹھ گھماؤ دار سیڑھیاں ہیں جو استمبھوں کے بیچ میں استھت ہیں، جن سے اوپر کے ککشوں ایوم ہالوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چار مکھ و بڑے ہالوں میں چار بڑی کھڑکیاں ہیں جن سے عمارت کے بھیتر پرکاش آتا ہے۔
اسی پرکار ان کھڑکیوں سے سمے کا بھی اندازہ لگایا جاتا تھا۔ یہ پورا گنبد چھوٹی نیلی ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس گنبد کی پرمکھ ایوم ادوتیہ وشیشتا اس کا دو پرتوں میں ہونا ہے۔ اسی کے درشٹیگت اطالوی شودھکرتا سین پایولیزی کہتا ہے کہ میری نظر میں سلطانیہ عمارت سے پہلے وشو میں ان وشیشتاؤں والی کوئی عمارت نہیں ڈھونڈی جا سکتی، اتا وشو میں اس عمارت کا مہتو دھیان یوگیہ ہے۔ عمارت کی وشالتا نے آنترک پرانگن کو اتھیدک پرتشٹھت بنا دیا ہے۔
عمارت کے وشال اور شاندار آنترک بھاگ کو بہت ہی سوچ وچار کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آنترک دیوانے پلاسٹر سے سسجت ہیں۔ ٹائلوں پر چترکاری دوارا بڑے سلیخ و دھارمک ڈیزائن اور قرآن مجید کی آیتیں آنترک درشیہ کو جیون پردان کرتی ہیں۔ سندر النکر ایوم واستو کلا جیومتی سنرچنا اور آکرشک رنگوں کے سمنوے سے ایسی ادویتی عمارت کا نرمان کیا گیا جو واستو کلا کی درشٹی سے اتکرشٹ کلا کرتی ہے۔ ایرانی واستوکاروں نے اپنی رچناتمک شکتی سے اس پرکار کی عمارت کا نرمان کر کے اسے وشو کی ادویتی دھروہروں میں شامل کر دیا ہے۔ اس عمارت کو سن 1384 ہجری شمسی میں راشٹریہ دھروہر، ایران کی ایتہاسک عمارت ایوم وشو دھروہر کے روپ میں درج کیا جا چکا ہے۔
پراچین کال سے ہی سلطانیہ گنبد ایتہاسک دھروہروں میں روچی رکھنے والے ایوم پریٹکوں کے آکرشن کا کیندر رہا ہے۔ ان پریٹکوں میں سے کئی نے اس کا وورن لکھا ہے۔ حافظ آبرو کا اس بارے میں کہنا ہے کہ یہ ایسی ادویتی عمارت ہے کہ اس کی بھانتی وشو میں کوئی عمارت نہیں ہے۔
پروفیسر آندرے اس عمارت کا وورن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نشچت روپ سے مغل واستو کلا کا اتکرشٹ نمونہ ہے تتھا ایران کی اسلامی واستو کلا کی ایک اتم اپلبدھی ہے اور تکنیکی درشٹی سے سمبھوتا اتیادھک آکرشک ہے۔ پروفیسر پاولیزی کا ماننا ہے کہ مجھے وشواس ہے کہ جو گنبد سلطانیہ گنبد سے 100 سے بھی ادھک ورشوں کے بعد نرمان کیا گیا ہے، ارتھات 1418 اور 1419 میں فلیپو برونیلیشی ایوم ایمیلیڈو ڈی فیبرس دوارا سینٹ میری آف دی فلاور چرچ پر بنایا گیا تھا، واستو کلا کی درشٹی سے سلطانیہ گنبد سے پربھاوت ہے، اس لیے کہ سلطانیہ گنبد کیول ایسا دو پرتوں والا سمیتی گنبد ہے جو سمست ایشیا میں ہے، اتا یورپ میں اس پرکار کے ایک ماتر گنبد پر اس کے پربھاؤ کو نکارا نہیں جا سکتا ہے۔
وشال سلطانیہ گنبد جو پرتی ورش بڑی سنکھیا میں پریٹکوں کو آکرشت کرتا ہے، اینٹوں سے نرمت وشو کے سب سے بڑے گنبدوں میں سے ایک ہے۔ پچھلے 700 ورشوں میں 1600 ٹن وزن کے ساتھ یہ گنبد ابھی بھی موجود ہے۔ 7 شتابدیوں کے دوران یہ 8 سینٹی میٹر دھس چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلورنس شہر کے وشال گنبد کے نرمان میں اس گنبد سے لابھ اٹھایا گیا ہے۔ اس گنبد کی عمارت سینٹ میری آف دی فلاور و ہاگیا صوفیا گنبدوں کے بعد وشو کا تیسرا بڑا گنبد ہے جو بہت شاندار واستو کلا پر آدھارت ہے۔
سینکڑوں سال بیت جانے کے بعد آج بھی درشکوں کو یہ اپنی اور آکرشت کر رہا ہے۔ صفوی ایوم قاجاری کال میں اس وشال گنبد کا کئی بار پنر نرمان ہو چکا ہے، ورتمان سمے میں بھی اس میں آدھار بھوت پنر نرمان جاری ہے۔ وبھن کالوں میں سلطانیہ گنبد وبھن آیاموں سے دھیان یوگی رہا ہے اور اس کا بہت مہتو ہے۔ سلطانیہ گنبد کے پرانگڑ میں پراتتو وبھاگ نے وبھن کالوں میں کھدائی کرائی جس میں ایتہاسک وستوئیں پراپت ہوئی ہیں۔ اس کھدائی کے پریڑام سوروپ یہ گیات ہوا ہے کہ یہ وستوئیں وبھن سانسکرتک کالوں سے سمبندھ رکھتی ہیں۔
अंत में कहा जा सकता है कि इस प्रकार निर्मित इमारत की महानता मनुष्य पर आश्चर्यचकित प्रभाव डालती है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें चमकदार सुल्तानी गुंबद, खाकी रंग की बुनियाद और चमकदार मीनारों पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश ने पंख खोले हुए है। इस सुंदर एवं मनमोहक कलाकृति को ऐसी कला ने जन्म दिया है जो विशेष शिष्टता से गुंबद के चारों ओर प्राकृतिक नीले रंग की ईंटों से अलंकृत है। यह दर्शक को वास्तुकार एवं निर्माता की कला में प्रवीणता की सराहना के लिए बाध्य कर देता है।
इस विशाल इमारत को गहराई से देखने पर मालूम होता है कि मकबरे के अतिरिक्त जिसमें केंद्रीय गुंबद की इमारत भी शामिल है जो तुर्बत खाने के नाम से प्रसिद्ध है, मकबरे के निकट अन्य इमारतों का भी निर्माण किया गया था। आपके लिए ये जानना उचित होगा कि सुल्तानिये गुंबद के निकट ईलखानी काल का एक उत्कृष्ट नमूना पाया जाता है जिसे माबदे अजदहा के नाम से जाना जाता है। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक ड्रैगन और दूसरे कुछ इस्लामी मेहराबें। ये बात ईलखानी काल में सुदूर पूर्व के प्रभावों का परिचायक है।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदारी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हम इस बात से अवगत हुए थे कि रूसी महिला फातिमा अनास्तासिया इजोवा किस प्रकार मुसलमान हुई थी। इसी प्रकार हम अमेरिका और ज़ायनियों के मुकाबले और इस्लामी मुक्ति मोर्चे के समर्थन के बारे में उनके दृष्टिकोण से भी अवगत हुए थे, परंतु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राण प्रिय सुपुत्री हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा और हिजाब के बारे में उनके दृष्टिकोण सुनने के लायक हैं। हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में उनके जो विचार हैं वो उनके अध्ययन और ज्ञान को दर्शाते हैं। फातिमा अनास्तासिया कहती हैं कि वो आरंभ में हिजाब का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन फिर अपने दोस्तों के प्रोत्साहन, अध्ययन और धर्मगुरुओं के मार्गदर्शन से हिजाब करने लगी।
फातिमा अनास्तासिया कहती हैं, हिजाब मेरे जीवन का एक भाग बन चुका है, ठीक उन कार्यों की तरह जिन्हें मैं रोज अंजाम देती हूँ। मैं हिजाब के बिना रहूँ अब इसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि समाज के लोग हिजाब के बारे में क्या सोचेंगे। अलबत्ता मैं कहती हूँ कि अब तक समाज के लोगों का विचार मेरे बारे में सकारात्मक रहा है, जबकि मैं दूसरे तरीके से वस्त्र पहनती हूँ। इस्लाम के आदेशों के पालन में महान ईश्वर की प्रसन्नता पर ध्यान देना लोगों की इच्छाओं पर ध्यान देने से अधिक अहम है, क्योंकि वो अपने बंदों के हितों को सबसे बेहतर जानता है।
इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली इस रूसी महिला का विश्वास है कि हिजाब वही आराम व शांति प्रदान करता है जिसे लोग ढूंढ रहे हैं, मगर जो लोग हिजाब के विरोधी हैं उनके पास इस बात को समझने की क्षमता व योग्यता नहीं है। कुछ लोगों द्वारा हिजाब के विरोध के कारणों को बयान करते हुए वे कहती हैं, नई पीढ़ी की समस्या ये है कि वो इस्लाम से अवगत नहीं है, अभी वो इस्लाम की अच्छाइयों से अवगत नहीं है, वरना वो नग्नता को आजाद विचार का नाम न देती। जब आध्यात्मिक दृष्टि से हमें अपनी पहचान नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि हमें हिजाब के बारे में दूसरों यहाँ तक कि महान हस्तियों की सिफारिशें भी मजाक लगेंगी। हिजाब में रहने का एक विशेष आनंद है जिसका आभास स्वयं हिजाब करने वाली ही कर सकती है और इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता।
दोस्तों, रूसी महिला फातिमा अनास्तासिया इस्लामी आवरण या हिजाब को वास्तविक इज्जत और आज़ादी का कारण मानती हैं और उसे इस प्रकार बयान करती है, समाज में जिस इंसान का जीवन व स्थान जितना ऊंचा होगा उसे उतना ही ये बात पसंद नहीं आएगी कि कोई उसके जीवन में हस्तक्षेप करें, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहता है। हिजाब महिला की रक्षा करता है। आम तौर पर हिजाब करने वाली महिला को समाज में विशेष नज़र से देखा जाता है। जब महिला का निजी जीवन सुरक्षित होगा तब उसे आज़ादी के आनंद का आभास होगा, इसलिए वो हिजाब को वास्तविक आज़ादी का चिन्ह मानती हैं। वो कहती हैं कि हिजाब सीमितता नहीं है बल्कि स्वयं के व्यक्तित्व का सम्मान है। वास्तव में यही आज़ादी है, यानी महिलाएँ स्वयं को पराए मर्दों की नज़रों से सुरक्षित रखती हैं।
जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उनमें से कुछ का मानना है कि हिजाब महिला के विदित सुंदरता को छिपा देता है और उससे बुरा दिखाता है। इस प्रकार के अनुचित विचारों का जवाब रूसी महिला फातिमा अनास्तासिया इस प्रकार देती हैं। हिजाब महिला के शरीर के एक भाग को छिपाता है जो पराए मर्द की भावनाओं को उत्तेजित कर सकता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वो महिला को बुरा करके दिखाता है। हिजाब करना सही न होने की दलील नहीं है जो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हिजाब करती हैं वे सही तरह से हिजाब करती हैं और वे ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं, किंतु चूंकि उनका शरीर ढका होता है इसलिए उन्हें बाजार की एक चीज के रूप में नहीं देखा जाता है। रोचक बात यह है कि संयोग से यही वो जगह है जहाँ महिला का विदित रूप नहीं बल्कि उसका व्यक्तित्व सामने आता है और उसके प्रतिष्ठा और गौरव का ध्यान रखा जाता है।
दोस्तों, जो लोग इस्लामी आवरण को बुरा और बेहिजाबी और महिला के अंग प्रदर्शन को सुंदरता का कारण मानते हैं, ऐसे लोग महिला की वास्तविक सुंदरता और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते हैं और वे केवल उसकी विदित सुंदरता पर ही ध्यान देते हैं। रूसी महिला फातिमा अनास्तासिया बल देकर कहती हैं कि उचित वस्त्र का न होना और नग्नता का अर्थ आज़ादी नहीं है, और इस संबंध में वो एक अच्छी मिसाल देती है और कहती हैं, नग्नता और हिजाब का न होना बिल्कुल शीशे के घर में जिंदगी बिताने जैसा है जिसमें कोई पर्दा न हो और पड़ोसियों का घर आपके घर से लगा हो और घर के अंदर का सब कुछ बाहर से दिखाई दे रहा हो। ये बात कोई भी पसंद नहीं करेगा कि घर के अंदर का सब कुछ बाहर दिखाई दे और उसकी व्यक्तिगत बातों व कार्यों से दूसरे अवगत हों।
वो आगे कहती हैं, हर महिला के पास एक आत्मा होती है भावनाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति महिला को एक वस्तु और वासना की दृष्टि से देखता है तो उसकी आस्था और भावना को आहत करता है और इससे महिला को दुख पहुंचता है और इस प्रकार के व्यवहार और दृष्टि से महिला का व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। जिस महिला का व्यक्तित्व ही खत्म हो जाता है तो उसका क्या मूल्य रह जाता है? एक वस्तु से ज्यादा उसका मूल नहीं रह जाता।
फातिमा कहती हैं कि पश्चिमी समाजों में न केवल परिधान में आज़ादी नहीं है बल्कि उसके बारे में अलिखित कानून है और अत्यधिक प्रचार करके उन्हें लोगों पर थोपा जाता है। वे इस विषय को इस प्रकार बयान करती हैं, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला है और परिधान, भोजन और दूसरे बहुत सारे आचरण व व्यवहार के बारे में बहुत से कानून हैं। पूंजीवादी समाज में समस्या यह है कि अगर कोई वस्त्र दृष्टिगत होता है तो जो भी उस समाज में होता है वो उसे खरीदने का पूरा प्रयास करता है ताकि उस समाज में वो दिखाई पड़े और ये एक गलती व भूल है।
वो कहती हैं कि एक महिला गायिका व अभिनेत्री की कल्पना कीजिए जो हिजाब नहीं करती और आम तौर पर इस प्रकार की औरतों की तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें उनके शरीर के अंग दिखाई देते हैं। जो लोग इस प्रकार की तस्वीरों के बारे में बहस करते हैं वास्तव में वे लोग इस इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बहस नहीं करते हैं बल्कि वे उसके वस्त्र और शरीर के बारे में बहस करते हैं और इस स्थिति में इंसान का व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता है और ये सबसे मूल्यहीन दृष्टि है जिससे इंसान को देखा जाता है और इस प्रकार के स्थिति में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो इंसान के व्यक्तित्व को नीचे लाता है और ये एक व्यक्ति के निजी जीवन में हमेशा हस्तक्षेप है और हिजाब इस प्रकार के हस्तक्षेपों के मार्ग में रुकावट व बाधा बन जाता है।
महिला का व्यक्तित्व के बारे में पश्चिम के तुच्छ व अपमानजनक दृष्टिकोण के मुकाबले में इस्लाम का दृष्टिकोण है जो महिला को एक रत्न की भांति मानता है और उसका कहना है कि महिला को बुरे लोगों की गलत नज़रों से बचाकर रखा जाना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम महिला की उपमा एक पुष्प से देते हैं जो पराए लोगों की नज़रों से दूर रहकर केवल घर के वातावरण में अपनी प्रफुल्लता की सुरक्षा कर सकती हैं। इसी कारण ईश्वरीय धर्म इस्लाम में विवाह करने और परिवार के गठन पर बल दिया गया है।
इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाली रूसी महिला फातिमा अनास्तासिया इजोवा इस बारे में कहती हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि काम वासना की पूर्ति विवाह के माध्यम से होनी चाहिए ताकि महिला अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वाह कर सके और विनाशकारी भूमिका से दूर रहे। इस्लाम के अनुसार विवाह करके महिला जितना चाहे सुंदर रह सकती है और अपने जीवन साथी के लिए स्वयं को बेहतरीन ढंग से पेश कर सकती है और ये वो चीज़ है जिसकी पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों के कथनों में बहुत सिफारिश की गई है। इस प्रकार पवित्र बंधन के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों अपनी शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और अवैध संबंध महिला को मर्दों की कामेच्छा की पूर्ति का माध्यम बना देगा जबकि इस्लामी रिवायतों में पति पत्नी के एक दूसरे से प्रेम करने पर बल दिया गया है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जितना इंसान का ईमान परिपूर्ण होगा उतना अधिक अपनी पत्नी से प्रेम व्यक्त करेगा।
दोस्तों, महिला के बारे में इस्लाम का जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर रूसी महिला फातिमा अनास्तासिया महिला और पुरुषों के बीच नारीवाद के अनुसार जो प्रतिस्पर्धा है उसे रद्द करती है और कहती है मर्द एक दोस्त, एक पति और एक मार्गदर्शक होता है जो महिला का समर्थन करता है और वो उसकी स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा करने और उसकी योग्यताओं के निखारने में उसकी सहायता करता है। वो कहते हैं कि ये वो मॉडल है जिसे इस्लाम महिला के लिए निर्धारित करता है। हज़रत फातिमा जहरा वो आदर्श व महान महिला हैं जिनका अनुसरण करके महिला आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच सकती है। हज़रत फातिमा वो महान महिला है जिनके नाम का चयन रूसी महिला अपने लिए करती हैं और उस पर वो गर्व करती हैं। वे पैगंबर की प्राण प्रिय सुपुत्री की विशेषता इस प्रकार बयान करती हैं, हजरत फातिमा जहरा सलामुल्ला अलैहा हर समय की महिलाओं के लिए आदर्श हैं। उनकी विशेषताएं एक वास्तविक महिला की बुनियादी विशेषताएं हैं।
वो मिसाल पेश करते हुए कहती हैं, जैसे हजरत फातिमा जहरा एक अच्छी धर्मपरायण और अपने पति से प्रेम करने वाली पत्नी हैं, वैसे ही वे एक आदर्श माँ हैं जो बहादुर और क्रांतिकारी हस्तियों का लालन पालन और प्रशिक्षण कर सकती हैं। फातिमा अनास्तासिया घर में हजरत फातिमा जहरा की केंद्रीय भूमिका पर बल देते हुए कहती हैं कि वो घर के कार्यों को अंजाम देने में एक गृहिणी की भूमिका निभाती हैं। यद्यपि घर के कार्यों को अंजाम देना महिला के लिए अनिवार्य नहीं है बल्कि सुन्नत है, परंतु जब एक महिला अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन परोसती है तो उसका एक विशेष स्वाद होता है और वो घर के वातावरण में एक विशेष प्रकार की मिठास उत्पन्न करता है। वो हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत फातिमा जहरा सलामुल्ला अलैहा को जीवन का सर्वोत्तम आदर्श बयान करते हुए कहती हैं, हमें उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि पत्नी और माँ होना समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और न्याय के मार्ग में संघर्ष में कोई बाधा नहीं है।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। राष्ट्रपति ने कहा है कि मानवीय मामलों के दृष्टिगत ईरान में विदेशी नागरिकों का वैक्सीनेशन भी पूरी गंभीरता से जारी रहेगा। अमेरिका ने कहा है कि वो परमाणु समझौते से निकलकर अलग थलग पड़ गया है। अफगानिस्तान गेहूं भेजने के मामले में भारत और पाकिस्तान के मध्य सहमति बन गई है। अफ्रीकी देश माली के केंद्र में आतंकवादी हमले में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। श्रोताओ, में आशाई कुमार आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आया होगा, तो शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि।